नमस्कार, आप सुन रहे हैं जनसत्ता पर कारोबार जगत की बड़ी खबरें। भारतीय मूल के लक्ष्मण नरसिम्हन को कॉफी कंपनी स्टारबक्स का अगला मुख्य कार्यपालक अधिकारी CEO नामित किया गया है। अभी वह ब्रिटेन की स्वास्थ्य एवं पोषण कंपनी रैकिट बेनकिसर के CEO हैं। स्टारबक्स ने बृहस्पतिवार को घोषणा की कि 55 वर्षीय नरसिम्हन कंपनी के अगले CEO होंगे और वह स्टारबक्स के निदेशक मंडल के सदस्य भी होंगे। नरसिम्हन 1 अक्टूबर 2022 से आगामी CEO के तौर पर कंपनी से जुड़ेंगे और वह अंतरिम CEO हार्वर्ड शुल्ट्स के साथ काम करेंगे। वह निदेशक मंडल में और नेतृत्व भूमिका में 1 अप्रैल 2023 से आएंगे। रैकिट बेनकिसर ने बृहस्पतिवार को एक बयान में कहा कि नरसिम्हन 30 सितंबर 2022 को CEO पद छोड़ेंगे। नरसिम्हन ने एक बयान में कहा कि वैश्विक कॉफी कंपनी के साथ जुड़ना उनके लिए प्रसन्नता की बात है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि बीते 8 वर्षों में केंद्र ने मनरेगा योजना पर 5 लाख करोड़ रुपए खर्च किए हैं, जिनमें से 20% कोविड-19 महामारी के दौरान व्यय किए गए। तेलंगाना के कामारेड्डी जिले में बृहस्पतिवार को संवाददाताओं से बातचीत में सीतारमण ने कहा कि बीते 8 वर्षों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत राज्य को 20,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। उन्होंने कहा, बीते 8 वर्षों में तेलंगाना को मनरेगा के तहत 20,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इसी अवधि में पूरे देश में 5 लाख करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, जिनमें से 20% से अधिक 2020-21 के दौरान कोविड-19 के प्रकोप के वक्त खर्च किए गए। इसमें अहम मुद्दा ये है कि यदि पैसा ठीक से खर्च नहीं होने की शिकायतें आती हैं या ऑडिट रिपोर्ट में कोई टिप्पणी होती है तो सर्वे दल किसी भी राज्य में आएंगे। ऐसे आरोप लगाए गए थे कि सर्वे दलों को योजना को रोकने के लिए भेजा जा रहा है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि कोई विसंगतियां होने पर सर्वे दलों को उनमें सुधार करने के लिए भेजा जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि संप्रग सरकार के कार्यकाल में योजना में अनेक खामियां थीं, जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने दूर किया। इसे अप्रत्यक्ष लाभ अंतरण के जरिए लागू किया जा रहा है। मिले जुले वैश्विक रुख के बीच शुक्रवार को शुरुआती कारोबार में प्रमुख शेयर सूचकांकों में तेजी रही। एक दिन पहले शेयर बाजार में गिरावट आई थी। इस दौरान BSE सेंसेक्स 342.07 अंक चढ़कर 59,108.66 पर पहुंच गया। NSE निफ्टी 101.05 अंक बढ़कर 17,643.85 पर कारोबार कर रहा था। सेंसेक्स में NTPC, ITC, बजाज फाइनेंस, कोटक महिंद्रा बैंक, लार्सन एंड टुब्रो, टाइटन, महिंद्रा एंड महिंद्रा एंड एशियन पेंट्स बढ़ने वाले प्रमुख शेयरों में शामिल थे। दूसरी ओर टाटा स्टील, इंडसइंड बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, HDFC, अल्ट्राटेक सीमेंट और बजाज फिनसर्व के शेयर नुकसान में कारोबार कर रहे थे। अन्य एशियाई बाजारों में सियोल और शंघाई में बढ़त थी, जबकि टोक्यो और हांगकांग में गिरावट हुई। अमेरिकी बाजार बृहस्पतिवार को तेजी के साथ बंद हुए थे। पिछले कारोबारी सत्र में बृहस्पतिवार को 30 शेयरों पर आधारित BSE सेंसेक्स 770.48 अंक यानी 1.29% की गिरावट के साथ 58,766.59 अंक पर बंद हुआ। इसी प्रकार नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 216.50 अंक यानी 1.22% टूटकर 17,542.80 अंक पर बंद हुआ। अगर आप ऑनलाइन गेम खेलने के शौकीन हैं तो अब आपको भी टैक्स देना पड़ सकता है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स CBDT का कहना है कि अगर कोई पिछले वित्तीय वर्ष में ऑनलाइन गेम खेलकर रकम जीती है तो आपको एक अपडेट ITR यानी ITRU दर्ज करना होगा और इसी अनुसार जीत पर टैक्स का भुगतान करना होगा। CBDT के अध्यक्ष नितिन गुप्ता ने हाल ही में कहा था कि ITRU का उपयोग करदाताओं की उन कैटेगरी द्वारा भी किया जा सकता है जिनकी ऑनलाइन गेम, लॉटरी और सट्टेबाजी आदि से आय होती है। साथ ही नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना या आयकर कानून के तहत कोई अन्य कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। बजट 2022 के भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि ITRU इनकम टैक्स रिटर्न का अपडेट है। इसे आयकर अधिनियम 1961 की धारा 39(8)(a) के तहत फाइल किया जा सकता है। ITRU को कोई भी टैक्स पेयर अपनी गलती और किसी भी आय में अपडेट के तहत ITRU दाखिल कर सकता है। ITRU संबंधित असेसमेंट ईयर से 2 साल तक सुधार के लिए उपलब्ध होता है। ITRU करदाताओं को किसी भी आय को शामिल करने का अवसर प्रदान करता है जिस पर वे अपना ITR दाखिल करते समय कर का भुगतान करना भूल जाते हैं। लोग अपनी वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए लोन लेते हैं। हालांकि लोग अपनी आवश्यकता के आधार पर होम, कार व पर्सनल आदि तरह के लोन का चयन करते हैं। पर्सनल लोन आपको पूरी तरह स्वतंत्रता देता है। आप इस पैमाने का इस्तेमाल कहीं भी कर सकते हैं। वहीं जब आप एक पर्सनल लोन लेते हैं तो उच्च ब्याज दर के कारण इसे जल्द से जल्द चुकाने की तैयारी करते हैं। यहां जानकारी दी गई है कि एक लंबी भुगतान अवधि आपके लिए कैसे फायदेमंद हो सकता है। पर्सनल लोन पर लंबी भुगतान अवधि के साथ आपको कम ईएमआई की सुविधा मिलती है। कुल ब्याज और मूलधन का भुगतान लंबी अवधि में बांटा गया है। कम ईएमआई से आप अपने मासिक खर्चों को मैनेज कर सकते हैं और बिना दबाव के अपने वित्तीय जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। पर्सनल लोन के लिए आवेदन करने से पहले लोन की राशि पर विचार करना चाहिए। यह आपकी वित्तीय जरूरतों और सामर्थ्य पर निर्भर करता है। एक लंबी पुनर्भुगतान अवधि आपको अनुपात के आधार पर अधिक लोन राशि लेने की अनुमति देती है। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आइए जनसत्ता.com पर। नमस्कार।